भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। लोग श्रीमद्भागवत के स्कंद 6 अध्याय 3 का श्लोक संख्या 31 पे विचार करेंगे। तस्मा संकीर्तनम विष्णु जगन्मंगलम असाम महतामपि कौरव्य विद्यै एकांतिक निष्कृतम् तस्मात् इसलिए संकीर्तनम् पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन विष्णु भगवान विष्णु के जगत मंगलम इस भौतिक जगत के भीतर सर्वाधिक शुभ कार्य हम हसाम पाप कर्मों के लिए महतामपि महान होते हुए भी कौरव्य हे कुरुवंश के वंशज विद्धि समझो एकांतिक चरम निष्कृतम प्रायश्चित। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कर्मा श्री विग्रह श्री जगद्गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मीलित करने में सक्षम है, इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग भी इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सकें। कृपया दोहराइए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मीलित करने में सक्षम है, इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सकें। तात्पर्य हमें ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि अजामिल ने नारायण के नाम का अधूरे रूप में उच्चारण किया था, किंतु सारे पाप फलों से उसका उद्धार हो गया। पवित्र नाम का कीर्तन इतना मंगलप्रद है कि यह हर एक को पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर सकता है, किंतु उससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति पाप के फलों का निराकरण करने के लिए हरे कृष्ण कीर्तन करके पाप करता रह सकता है, प्रत्युत उसे समस्त पापों से रहित होने के लिए सावधान रहना चाहिए। और हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा पाप कर्मों का निवारण हो जाएगा यह कभी सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह दूसरा अपराध है। यदि संयोगवश किसी भक्त से कोई पाप कर्म हो जाता है तो भगवान उसे क्षमा कर देंगे, किंतु मनुष्य को जानबूझकर पाप कर्म नहीं करना चाहिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे ओम अज्ञानतिमिरांधास्य ज्ञानांजनम शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंदो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये अजामिल का उपाख्यान छठवें स्कंद के आरंभ में वर्णन किया गया है, और इस अध्याय का शीर्षक यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। यमराज जो कि इसी श्लोक अध्याय में आया कि भक्ति के जो 12 महाजन हैं उनमें से एक हैं। इसके पहले पंचम स्कंद में हम लोगों ने ये भी देखा कि विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन है, कैसे पाप करने के फलस्वरूप हम विभिन्न प्रकार के नरक में भेजे जाते हैं, रौरव नरक कुंभीपाक नरक इस तरह से नरक हैं। इसी संबंध में छठवें स्कंद के आरंभ में परीक्षित महाराज ने पूछा, दृष्टा शताभ्याम यत पापम, कि मनुष्य देखता भी है सुनता भी है फिर भी पाप कर्म में क्यों संलग्न होता है, और यदि विविध प्रकार के पापों का ये प्रायश्चितों का वर्णन है तो ऐसे प्रायश्चित का क्या लाभ। उपदेशामृत में श्री प्रभुपाद ने इसी श्लोक को समझाया है कि हम अनुभव जो हैं दो प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं, सुनने के द्वारा यदि मनुष्य सुनता है संविधान के ग्रंथों से, कानून की किताबों से कि चोरी करना पाप है, चोरी करेंगे तो हमको पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर सकती है, तो वो ऐसा कर्म में संलग्न नहीं होता है। कोई व्यक्ति देखता भी है कि हाँ वो उसने चोरी किया और उसको पकड़ा गया, तो देख करके भी दृष्ट वो पाप कर्म छोड़ता है। और कुछ ऐसे महान व्यक्ति हैं जो सुनने के द्वारा भी, देखने के द्वारा भी, और चोरी करने पे पकड़े जाने के बाद भी जैसे कारागार से बाहर आते हैं फिर वो उसी कर्म में संलग्न हो जाते हैं। बल्कि हम लोग के गुरु भाई बंबई में हरिदास जो कि फिल्म बनाते हैं, सबसे पहले उन्होंने जेल में ही प्रभुपाद पत्रिका के दर्शन किए और उनकी दृष्टि थी कि स्वामी जी की जो घड़ी है वो सोने की है, इसको जब मैं जेल से निकलूंगा इसको ग्रहण करूंगा, इसको किसी न किसी प्रकार मेरे पास रहना चाहिए। परंतु भगवान की कृपा थी, भक्तों के संग से जब वो आए भक्त बने। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज ने यह भी समझाया है कि यदि प्रायश्चित करना ही सब कुछ है तो मनुष्य फिर क्यों प्रायश्चित में करने में कर पश्चात भी पाप कर्म करने में क्यों। उसका उदाहरण दिया मन्य कुंजर शौचवत गज स्नान, जैसे हाथी जो है खूब अच्छी तरह झील में नहाता है और अंततः फिर धूल में लौटता है, तो उसके स्नान का क्या महत्व। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे तथाकथित धर्म में मत भी ये है कि कन्फेशन, हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम बहुत निर्बल हैं अतः हमें पापों के लिए हमें क्षमा किया जाना चाहिए। 6 दिन ऐसे लोग पाप कर्म में संलग्न होते हैं, 7वें दिन जाते हैं, वहाँ एक कक्ष होता है कन्फेशन कक्ष, उसमें पादरी बैठे रहते हैं, वो ना आपका चेहरा देख सकते हैं ना आप उनका, और वो व्यक्ति कहता है कि मैं हे जीसस क्राइस्ट मैं बहुत निर्बल हूँ, मुझे आप कृपा करके क्षमा करिए। और वो कहते हैं हाँ तुम्हारे पाप जो हैं उन्होंने ग्रहण कर लिए हैं, अब तुम पाप से मुक्त हुए। फिर वही 6 दिन वही कार्य और फिर जाके स्वीकार करना। तो इसको भागवत में जैसे परीक्षित महाराज ने भी समझाया है कि ये मन्य कुंजर शौचवत है, ऐसे प्रायश्चितों से पाप करने की प्रवृत्ति का नाश नहीं होता, इसलिए मनुष्य फिर से पाप के कर्मों में संलग्न होता है। चैतन्य लीला में हम लोग महाराज सुबुद्धि राय का उदाहरण है। सुबुद्धि राय भी पहले गौड़ देश के ही राजा थे और जो हुसैन शाह उनका कर्मचारी था, एक सेवक था, परंतु किसी प्रकार षड्यंत्र करके वो खुद राजा बन बैठा। और जब वो सेवक था तो राजा ने उसको दंड दिया था पीठ में चाबुक, तो जब उसकी बेगम ने ऐसे पीठ देखा तो बोले किसका निशान है, क्या जब मैं सुबुद्धि राय का कर्मचारी था तो मुझे ये दंड मिला था। तो उन्होंने कहा अब तो आप स्वयं हैं बादशाह हैं, आपको इसका अवश्य उसको प्रतिकार करना चाहिए। पहले उसने कहा नहीं, सुबुद्धि राय ने मुझे बहुत एहसान किए हैं और उन्होंने जो भी किया मेरे हित के लिए किया, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। परंतु जब उन्होंने हट पकड़ लिया कि नहीं आपको कुछ ना कुछ दंड देना पड़ेगा, तो उन्होंने सुबुद्धि राय को अपना जूठा जल पानी पिला दिया, तो उससे यह हुआ कि आपको इस समाज से बहिष्कृत किया जाता है। महाराज सुबुद्धि राय ने पूछा पंडितों से कि इस जो मुझे से भ्रष्ट कर दिया गया है इसको वापस क्या उपाय है, क्या प्रायश्चित है। तो पंडितों ने कहा कि हम लोग के कर्मकांड शास्त्र के अनुसार आपको जो पिघलता हुआ घी है उसका पान करना करके अपना प्राण त्यागना पड़ेगा, तभी इसका प्रायश्चित हो सकता है। उनमें इतना साहस नहीं हुआ तो बेचारे वहाँ से बनारस आ गए और क्योंकि राज्य से तो विहीन हो ही चुके थे, तो लकड़ी बेच करके अपना जीवन यापन करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु का काशी आगमन हुआ तो सुबुद्धि राय ने उनसे भी ये प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लीजिए, हरि नामुन ऋणीनितम, इससे बढ़ के, इसके जप से बढ़ के कोई प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि ये हमें जो पाप करने की प्रवृत्ति है इससे मुक्त करता है। हम लोगों ने इस पूरे अजामिल उपाख्यान में ही नाम के महिमा देखी, कैसे विष्णुदूतों ने पहले यमदूतों को समझाया, फिर यमराज ने यमदूतों से कहा, परंतु प्रत्यक्ष नाम का प्रमाण हम लोग ये हरे कृष्ण अभियान जो संकीर्तन आंदोलन है उससे हम देख सकते हैं। एक बार श्री प्रभुपाद ने 1976 में लंदन में मुझसे से कहा था कि देखो, नाम का प्रमाण तो शास्त्रों में है ही है, परंतु तुम प्रत्यक्ष रूप से इन विदेशी वैष्णवों को देख करके नाम के शक्ति का किंचित मात्र जो अनुभव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनके पूर्वज, इनके पिता पितामह, बाप दादा, इन लोगों ने भी कृष्ण का नाम नहीं सुना, परंतु क्योंकि निरअपराधी हैं ये, इन्होंने कोई पहले अपराध नहीं किया, इसलिए इनके ऊपर नाम का प्रभाव प्रत्यक्ष हुआ है। जैसे कि कलिकाल का युग धर्म जो है नाम संकीर्तन, वर्णादि पुराण का श्लोक हम लोग को सबको ज्ञात है, और धर्म जो है इसी अध्याय में उन्होंने देखा कि धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। हम और आप जो है धर्म का निर्माण नहीं कर सकते हैं, केवल भगवान जो हैं वही धर्म की रचना कर सकते हैं। जिस प्रकार से जो संविधान के नियम हैं वो राज्य के द्वारा ही उनका निर्माण हो सकता है। तो एक बार श्री प्रभुपाद को ऑस्ट्रेलिया में एक बार बुलाया गया और उनको ये शीर्षक दिया गया कि कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ रिलीजन, धर्म का जो है वो निष्ठ स्तर क्या है जिससे कि सब धर्म एक स्तर पर आके एक हो सके। तो श्री प्रभुपाद ने जो ये श्लोक है, सबै पुंसाम परो धर्म यथो भक्तिर अधोक्षये अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। पुंसाम मतलब मनुष्यों का परम धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, यथो भक्तिर अधोक्षये, जो अधोक्षत भगवान की, जिसके द्वारा हम भक्ति प्राप्त कर सकें, और ऐसी भक्ति जो है अहेतुकी, उसका कोई कारण नहीं है, और अप्रतिहता किसी भी कारण से, उसमें किसी भी बाधाओं से उसको रुक नहीं सकती। और उसका फल क्या है इस प्रकार के परम धर्म का अनुशीलन करने से, यह आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा प्रसन्न होती है। अभी तक जितने धर्म हैं सब वो शरीर से ही संबद्ध हैं, किसी का पूर्व जन्म के अनुसार क्रिश्चियन धर्म में हो गया तो उस पर रबर का स्टैंप लग गया कि तुम क्रिश्चियन मत के हो, किसी का हिंदू मत का है, परंतु शरीर के आधार पे हैं। आत्मा तभी प्रसन्न होगी जब हम अपने अंशी परमात्मा से जुड़ेंगे। जिस तरह से हम कृष्ण के अंश हैं, मामय वंशो जीव भूतो जीव सनातन, उसी प्रकार से हम प्रसन्न होने के लिए जब अपने अंशी के संपर्क में आएंगे तो अपने आप हम लोग प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे कि प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि मछली जो है वो जल में रहती है, जल का अंश है, मछली को यदि हम बाहर निकाल दें और सब प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं, विशाल भवन, रंगीन टीवी, सोफा सेट, एसी सब दे दें, पर मछली जो है वो तड़प तड़प करके मर जाती है। उसको सुखी करने का उपाय क्या है, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, कि फिर से हम उनके अंश जल में डाल दें तो अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। तो उसी प्रकार भगवान के संपर्क में आने से आत्मा को वह अपने आप प्रसन्न होती है। उस कलयुग में जो संपर्क है, जैसे कि इसी अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है कि नामोच्चारण महात्मयम हरे, जो भगवान श्री हरि के नामोच्चारण का महात्म्य है। और इस श्लोक पे हम लोगों ने देखा भी पहले कि बड़े बड़े जो हम लोग के आचार्य हैं, जैसे श्रीधर स्वामी ने टीका किया, चक्रवर्ती विष्णा चक्रवर्ती ठाकुर ने भी इसको समझाया है अगले श्लोक में जो 24वां श्लोक था, एवं धर्मेण मनुष्याणाम। जो मनुष्य का धर्म क्या है, भगवान कृष्ण जो 11वें स्कंद के 29वें अध्याय में उद्धव गीता का जो वर्णन है, उद्धव जी को उपदेश दिया उन्होंने अपने धाम में जाने के पूर्व, उसका ये श्लोक है कि मनुष्याणाम का जो धर्म जो है वो भगवान की सेवा। धर्म जो है धृ धातु से उत्पन्न हुआ है, धृ मतलब धारण करना। हिंदू मत, क्रिश्चियन मत, मुस्लिम मत ये धर्म इसलिए नहीं है क्योंकि धर्म मतलब सनातन ना, जिसका अभी अंत हुआ हम कहते हैं सनातन धर्म, इसमें आगे भी समझा प्रभु ने भागवत धर्म या सनातन धर्म क्या है, जिसका ना कभी अंत हो और ना कभी उसका आरंभ हो। तो एक क्रिश्चियन हिंदू बन जाता है, एक हिंदू मुस्लिम बन जाता है, तो सनातन कहाँ हुआ? सनातन जो है वो आत्मा सनातन है, भगवान सनातन है और उनसे हमारा संबंध सनातन है। तो इसको पद्म पुराण में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है कि नाम अपराध युक्ता नाम। ये नाम अपराध के साथ या नामाभास, जिसको काफ़ी विशद व्याख्या हो चुकी है, नामाभास का अर्थ होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान का नाम लेने का उद्देश्य नहीं है। अजामिल भी उसके उदाहरण हैं कि उन्होंने यद्यपि अपने पुत्र को बुलाया था परंतु भगवान नारायण ने कहा कि ये मेरा नाम लिए है, इसलिए विष्णु दूत पहुँचे और उन्होंने उनको रोका। भक्ति सामर सिंधु में वर्णन है कि भक्ति के 64 अंग माने गए हैं। 64 अंग में भी 9 प्रकार का जो नवधा भक्ति हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, ये जो 9 प्रकार की भक्तियाँ हैं ये प्रमुख हैं। 9 में भी फिर 5 प्रकार की भक्ति को श्रेष्ठ माना है कि भागवत सेवा, ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत, श्री विग्रह की सेवा तीसरा, चौथा जो है वो भगवान के लीला स्थलियों में वास, वृंदावन धाम, मायापुर धाम, अयोध्या धाम, और पांचवा जो है वो नाम संकीर्तन। इन 5 भक्तियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं नाम संकीर्तन। नवविधा श्रेष्ठ सर्व नाम संकीर्तन, नवविधा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ जो है ये नवधा भक्ति है। तो इस श्लोक में हम लोग देखते हैं कि श्लोक का आरंभ जो हुआ वो तस्मात, तस्मात शब्द ये होता है कि जब हम प्रत्येक उपसंहार के रूप में पहले हमने वर्णन किया और अंत में जो निष्कर्ष के रूप में, जैसे भगवद गीता में हम देखते हैं तस्मात् सर्वकालेषु माम अनुस्मरण युद्धच, इस तस्मात् शब्द का ही प्रयोग आया है कि निष्कर्ष। तो यहाँ पे चूंकि अब ये अजामिल उपाख्यान ये 2 श्लोकों के बाद ये शेष समाप्त हो जाएगा, तो निर्णय के रूप में जो हैं यमराज समझाते हैं कि तस्मात् संकीर्तनम, ये निर्णय ये है कि संकीर्तन, संकीर्तन का होता है सम धन कीर्तन, बहुत लोग जब मिल के हरिनाम लेते हैं तो कीर्तन है, परंतु श्री प्रभुपाद ने संकीर्तन शब्द का भी हम लोग को एक नया अर्थ दिया है जो कि अनुवाद में से भी स्पष्ट है। संकीर्तन मतलब संकीर्तन अभियान, संकीर्तन आंदोलन, ग्रंथ वितरण भी संकीर्तन है। नाम कीर्तन तो है ही है, भगवान की कीर्ति का गान करना, लोगों को किसी उपाय से ग्रंथ के माध्यम से उनको भगवान कीर्ति के विषय में बताना, यह भी संकीर्तन है। ना तस्मात् संकीर्तनम शब्द आया है विष्णु, भक्ति सामर सिंधु में ही है कि भक्ति शब्द का वास्तविक प्रयोग भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के लिए ही हो सकता है। जब हम उनका भजन करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, श्रद्धा शब्द है विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, ये श्रद्धा शब्द का अर्थ है। ये सुदृढ़ निश्चय, अटूट विश्वास होना कि कृष्ण भक्ति करने से हम जो हैं वो सब प्रकार के कर्मों का उर्ण हो जाते हैं। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण का आश्रय लेने से, भगवान कृष्ण की भक्ति करने से हम जो हैं जो भी कर्तव्य हैं, जैसे दो उदाहरण दिए गए हैं भागवत में ही, कि जिस प्रकार से हम वृक्ष के मूल में जल देते हैं तो अपने आप वृक्ष के शाखा उपशाखा पत्तियों में चला जाता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की सेवा करने से, उनकी भक्ति करने से हम जीव मात्र की सेवा कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है, जैसे हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, हमारे सामने प्रसाद की थाली में विभिन्न प्रकार के व्यंजन जो कृष्ण को अर्पण किए गए हैं वो हैं, खीर है, रसगुल्ला है, ये है, यदि हाथ स्पर्श करता रहे परंतु उसका कोई लाभ नहीं है, वही हाथ उस प्रसाद को उठा के अपने उदर में देते हैं तो सब अंग उससे परिपुष्ट होते हैं। उसी प्रकार कृष्ण की सेवा करने से, भगवान विष्णु की सेवा करने से, विष्णु क्या होता है कि सबकी सेवा होती है और जगन मंगलम, जगत का वास्तविक में हम कुछ मंगल करना चाहते हैं तो इसीलिए भक्तगण जो संकीर्तन में जाते हैं तो न केवल ग्रंथ वितरण परंतु हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस संकीर्तन के माध्यम से भी हम उनका मंगल कर रहे हैं। श्री राजीव गोस्वामी पाद लिखा है कि किसी प्रकार का उत्सव हो उसके आदि में, मध्य में, अंत में हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए। भगवान का जो नाम संकीर्तन है वो जैसे हम लोग देखते हैं शिक्षाष्टक का पहला श्लोक भी, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, श्रेय कैरव मतलब जो मंगल रूपी ज्योत्सना चंद्रिका उसका वितरण करता है, ऐसे जो कृष्ण है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम का प्रभाव, शुद्ध नाम का प्रभाव तो बहुत दूर है भगवत प्रेम प्राप्त करना, जो नामाभास जो उदाहरण दिया गया संकेत से या हंसी में या अवहेलना से, ये हम नाम लें जिसको नामाभास कहा गया है। कभी लोग कहते हैं कि भगवान का नाम जपने में मन नहीं लगता, क्या करें, जिसके पहले श्लोक में भी जिह्वा शब्द का प्रयोग आया है, तो भगवान जैसे गीता में कहते हैं कि ये था माम प्रपद्यन्ते ता सदैं भजाम में हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा, जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है मैं उसका उसी प्रकार से मैं भी भजन करता हूँ। हमारे मन में, हमारा मन और हमारा जिह्वा, इन दोनों में भेद है। हम अपने जवान से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं पर कहते मन नहीं लगता, परंतु भगवान के मन में और जिह्वा में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण जो हैं वो उसी प्रकार से अपने भक्तों का स्मरण करते हैं जिस प्रकार से हम करते हैं। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि मन नहीं लगता तो कैसे जप करें, तो एक भौतिक उदाहरण जो शास्त्रों में दिया गया है कि अग्नि, अग्नि मतलब इसको हम चाहे मन से पकड़ें या बिना मन से पकड़ें या त्रुटिपूर्वक पकड़ें या हंसी में पकड़ें, आग अपना कार्य जो है वो कर देती है। उसी प्रकार भगवान नाम जो है उसका प्रभाव जो है, हम नाम संकीर्तनम जगन मंगल अंग हसाम, अम हसाम कहते हैं महापाप को, तो नामाभास के द्वारा ही, शुद्ध नाम तो बहुत दूर की बात है, जो लोग नामाभास लेते हैं उनके द्वारा भी बड़ा सा बड़ा पाप उसको उन्मीलित करने में, उसको नष्ट करने में वो सक्षम है। एक शब्द और आया है श्लोक में, विद्धि, जैसे ये भी गीता में आता है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शन है। संस्कृत में कई प्रकार के काल होते हैं, उसमें एक विधिलिंग होता है जिसमें आदेश, तो विद्धि जिसमें एक तरह से आदेश दिया गया है कि पहले तुम खुद समझो, क्या समझें कि हरिनाम संकीर्तन जो है ये जगन मंगलकारी है और बड़े से बड़े पापों का भी नाश करने वाला है, इसको पहले हम स्वयं ग्रहण करें। चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये शिक्षा दी कि आपनी आचारी करूं भक्ति रो प्रचार, अपने आचरण के द्वारा मैं भक्ति का प्रचार करूंगा, अपने आचरण से उन्होंने हमें शिक्षा दिया किस प्रकार हम कृष्ण का भजन करें। एक बार श्री प्रभुपाद से अमेरिका में एक टीवी इंटरव्यू में एक ने पूछा कि आप कहते हैं कि आपका मार्ग श्रेष्ठ है, अन्य पंथ वाले कहते हैं उनका मार्ग श्रेष्ठ है, तो हम लोग कैसे जान सकते हैं कि कौन सा मार्ग जो है वो उत्तम है और उसका पालन करना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि आप एक टीवी के इंजीनियर हैं, यदि आप अपने टीवी के विषय में कुछ ज्ञान देते हैं तो सर्वाधिक प्रामाणिक है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों के अनुसार स्वयं कृष्ण हैं और वो अपने विषय में शिक्षा दे रहे हैं कि इस प्रकार कृष्ण का भजन करो, अतः उनके द्वारा बताई गई विधि वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये विधि हम स्वयं समझें इसको, और फिर जब तक हम स्वयं गंभीर नहीं रहेंगे, प्योरिटी इज द फोर्स, जब तक हम चारों पापों का नियमतः पालन नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों को सहमत नहीं करा सकते हैं। गुड़ खाने वाली कथा आप लोग को मालूम है, कैसे महात्मा जी ने कहा कि तुम जब माँ के लेके गई कि तुम 10 दिन बाद आना तब मैं कहूँगा, तो फिर अपने बेटे को लेके गई तो वो उन्होंने कहा कि देखो बेटा गुड़ खाना छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं है। तो उसकी माँ ने कहा जब यही कहना था तो आपने 10 दिन पहले क्यों नहीं इसको ये कह दिया। तो महात्मा बोले कि ऐसा है कि उस समय मैं स्वयं बहुत अधिक गुड़ खाता था और मेरे कहने का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए मैंने 10 दिन स्वयं गुड़ को त्याग किया है तब मैं कह रहा हूँ। तो जब तक हम स्वयं शुद्ध नहीं होंगे अपने आचरण से, ठीक है कथा में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है, लाखों के लोग इकट्ठा होते हैं, पर जो स्वयं के आचरण से जब तक हम लोग नहीं पालन करेंगे, शुद्धता जो है वो बल है। तो इस्कॉन के भक्त बहुत बड़े प्रचारक, हम लोग इसका दावा नहीं करते, परंतु हमने कोशिश किया है कि इन चारों पापों को पहले स्वयं हम छोड़ें और तब फिर दूसरों को छोड़ने के लिए कहें। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि निष्कृतम जो सर्वश्रेष्ठ परम प्रायश्चित क्या है, भगवान के नाम का आश्रय लेना, और इसको हम स्वयं समझें और दूसरों को भी हम लोग समझ सकें। यही परम प्रायश्चित है जिसके द्वारा पाप करने की प्रवृत्ति का नाश होगा और हम उसके आगे फिर से पाप नहीं कर सकेंगे। तो ये संकीर्तन अभियान जो प्रभुपाद समझा रहे हैं ये सर्वाधिक मंगलकारी है। पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई शुभ कार्य है जिससे लोगों का हित होता है, उच्च स्वर से नाम संकीर्तन के हरिदास ठाकुर से पूछा गया कि आप जो कि वो रोज 3 लाख नाम लगभग 192 माला का जप करते थे, 22 घंटे 23 घंटे उसी में निकल गए, अगले दिन फिर स्नान किया फिर नाम यज्ञ में फिर दीक्षित हो जाते थे, तो उनसे कहा गया आप उच्च स्वर से नाम कीर्तन क्यों करते हैं। तो उच्च स्वर से कीर्तन करने से नाम जप करने से ये लाभ है कि जो व्यक्ति नाम नहीं जप सकता है उसके कान में जो जपना नहीं चाहता है वृक्ष पशु उनके कान में भी पड़ता है। तो सर्वाधिक प्रायश्चित या सर्वमंगलकारी संकीर्तन आंदोलन है, किसी बहाने हमें लोगों को भगवान के नाम के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए और हम उसको स्वयं नहीं, तो जैसे कि प्रभुपाद समझा रहे हैं कि यद्यपि अजामिल ने नारायण का नाम अधूरे रूप में उच्चारण किया परंतु उसका सारे पाप फलों से उद्धार हो गया, नामाभास के रूप में किया। तो हम जब स्वयं नाम की महिमा नाम का महात्म्य समझेंगे दूसरों को उपदेश देंगे, तो जैसे कहा गया है जैसे कि जो जो महान व्यक्ति करते हैं जनसाधारण उसका अनुगमन करता है, यद्यत आचरति श्रेष्ठस तत्तद एवे तरो जना सयत प्रमाणम कुरते लोकस तद अनुवर्तते, अनुवर्तते मतलब लोग उनका अनुसरण करते हैं। तो यद्यपि हम अपूर्ण रूप से ही कीर्तन कर रहे हैं परंतु जैसे कोई बीज होता है हम जब मिट्टी में डालते हैं कोई सीधा पड़ता है कोई उल्टा पड़ता है परंतु अंततः वो वृक्ष के रूप में परिणित होता है, उसी प्रकार हम जब भगवान का नाम ग्रहण करते हैं तो शुरू में नाम अपराध की अवस्था रहती है, प्रातःकाल हम लोग 10 नाम अपराध कहते हैं जिसमें एक नाम अपराध ये भी है कि नाम नो बला जैसे ही पाप बुद्धि न वित्तते तस्य अमेर ही शुद्धि, 7वां जो अपनाम अपराध है कि नाम के बल पे ये सही है कि नाम जपने से असंख्य जन्मों के पाप राशि जो नष्ट हो जाती है। जैसे उदाहरण दिया गया था कि अंधेरे कमरे में यदि एक थोड़ा सा हम प्रकाश कर दें तो पूरा कमरा प्रकाशमान हो जाता है, चाहे वो कमरे कितने वर्षों से अंधकार में क्यों ना हो। तो यद्यपि हम नामाभास के द्वारा सब पाप फलों का उद्धार हम लोग कर सकते हैं, परंतु ये महताम अपि पापम, बड़े से बड़े पापों का भी जो उन्मूलन है इसके द्वारा हो सकता है। परंतु प्रभुपाद फिर हम लोग को सचेत करते हैं तात्पर्य में कि इससे ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करें और पाप कार्यों में भी लगें। जैसे नाम जप का जो शुद्ध जो वास्तव में फल है वो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। अन्य फल जो हैं सिद्धियाँ, यौगिक सिद्धियाँ, जो आठ प्रकार की सिद्धियाँ हैं, महिमा, लघिमा, गणिमा, छोटा हो जाना, हल्का हो जाना, ये सब उसके उप कहना चाहिए बाय प्रोडक्ट या उप उत्पाद हैं। जो इनमें यदि उलझ जाता है वो भगवान का शुद्ध नाम की प्राप्ति नहीं होती। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि यद्यपि हरे कृष्ण कीर्तन से भगवान का ये सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, परंतु यदि हम यही सोच के ही नाम जप करेंगे तो इससे बढ़ के जो अपराध, इसको कहते हैं नारकीय बुद्धि, और उसकी शुद्धि यमराज जो कि महाजन होते हुए उन्होंने इतना उपदेश दिया, वो यमराज भी ऐसे व्यक्तियों की शुद्धि नहीं कर सकते हैं। सो यदि हम जानबूझकर पाप में संलग्न होते हैं तो उसके लिए जो है हमारे पास कोई प्रतिकार नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। भले हम नाम, तो उसमें यह भी है कि यदि अपराध सहित हम नाम का कीर्तन करेंगे तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए बर्तन में यदि छिद्र हो और हम उसमें जल भरना चाहें तो धीरे धीरे उसमें से पानी एकत्र नहीं हो सकता है और वो बहता जाएगा। उसी प्रकार से हमें जो भगवान नाम का जप करना है निरपराध होकर के, कृष्ण सबके हृदय में हैं, अपिचेत सुदुराचारो, भगवान गीता में कहते हैं कि जो सुदुराचारी है, घोर पापी भी है, यदि वो मेरी शरण में आता है तो उसको भी शुद्ध मानना चाहिए। तो उसका भावार्थ यह है कि हम संयोगवश अपने भूतकाल के जीवन के कारण यदि हम किसी प्रकार से पाप में संलग्न होते हैं तो निश्चय ही उससे मुक्त हो सकते हैं। परंतु पुनः यदि गज स्नान हाथी के समान फिर से हम उसी में संलग्न हो जाते हैं तब हमारा कोई उद्धार नहीं है। इसलिए अंतिम लाइन जैसे प्रभुपाद कहते हैं, संयोगवश यदि भक्त से कोई पाप कर्म हो भी जाता है तो भगवान से क्षमा कर देंगे, किंतु मनुष्य को जानबूझकर पाप कर्म नहीं करना चाहिए। तो इस जैसे मैंने बताया कि दो श्लोक के पश्चात ये जामिल का उपाख्यान जो है वो समाप्त होगा, चौथे अध्याय से दूसरा हंस गोय स्तुति वगैरह हैं। तो उसका जो निष्कर्ष यही है कि जो है भगवान का नाम संकीर्तनम, जैसे हम लोग कहते हुए कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिसके नाम संकीर्तन से सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, ऐसे भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण की हम लोग शरण लेते हैं। तो ये जो श्लोक है इसका मैं एक बार अनुवाद फिर से पढ़ देता हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फल को भी उन्मीलित करने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन जो कि इस्कॉन का भी मुख्य वो है, का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग इसे गंभीरतापूर्वक ग्रहण कर सकें। तो ये सारांश के रूप में, निष्कर्ष के रूप में यमराज जो हैं वो अपने यमदूतों को कह रहे हैं, और अपने सेवकों का उनका अपराध नहीं था, मगर उनके सेवकों के अपराध को स्वयं मानते हुए भी उन्होंने भगवान से भी क्षमा याचना की कि ये तो यह भक्त का एक विशेष स्वभाव होता है। तो भगवान नाम के कीर्तन का आश्रय हम लोग लें और निरअपराध होकर नाम जपेंगे तो बहुत शीघ्र अपने लक्ष्य की हम लोग प्राप्ति करेंगे। हरे कृष्णा। कोई शंका या कोई प्रश्न? है कोई कमेंट्स? ये दो बातें हैं। पहली बात तो क्या ये निश्चित है कि आप बुढ़ापे तक पहुंचेंगे, वृद्धावस्था तक? और दूसरी बात ये है कि जो हम अपने युवावस्था में, अभी हमारी इंद्रियां बलवान हैं, जो हम अभी कर्म करते हैं वो ही हमें मृत्यु के समय वही एक फिल्म के समान हमारे नेत्रों के सामने गुजरता है। तो यदि हमने युवावस्था में भगवान नाम का आश्रय नहीं लिया, कौमार आचरेत प्राज्ञो जो कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, तब वृद्धावस्था में, क्योंकि बूढ़ा तोता राम राम कहने में बड़ी कठिन, बार बार मुनि जतन करा, अंत समय में राम, ये तो अजामिल का उदाहरण ही है कि अंत समय में भी कृष्ण राम। तो ये कोई वो नहीं है कि हम भगवान का आश्रय वृद्धावस्था में लेंगे, अभी से ही भगवान का नाम लेना चाहिए। नहीं तो बच्चों का स्वभाव और बूढ़ों का स्वभाव एक जैसा होता है, उनकी इंद्रियां भी शिथिल हो जाती हैं और कोई काम दृढ़तापूर्वक नहीं कर सकते। युवावस्था से ही हमें भगवान का आश्रय लेना। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथा श्रीमद्भागवतम की।